ज्ञान मुष्टि अभी करो।
हेलो, जो भी आप सब कुछ यहाँ सुन रहे हैं और आपको जो भी किसी प्रकार की शंका हो तो आप अपने एक कागज में लिख करके रजनी भाई को भी दे सकते हैं, मेरे को भी दे सकते हैं। रात्रि में 8 से 9 बजे तक जो ज्ञान गोष्ठी होगी उसमें आपका समाधान जरूर आपको मिलेगा। इस तरह से आप ये ध्यान रखें, जो भी किसी को कोई शंका हो या प्रश्न हो तो अपने कागज में लिख करके रजनी भाई को दे सकते हैं।
त्रिकाळवर्ती अरहंताणम् प्रणमोलोयेशव त्रिकाळवर्ती शीताणम् प्रणमोलोयेशव त्रिकाळवर्ती आयिर्याणम् प्रणमोलोयेशव त्रिकाळवर्ती उवचायणम् प्रणमोलोयेशव त्रिकाळवर्ती शवश्रावणम् ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुंदारियो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे एगो में शाश्वतोपा नान दर्शन लखनऊ शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखना। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे, बाकी बदा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। तुस्थाप निज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः श्री देवी नमः श्री देवी नमः श्री देवी। अपनी चर्चा समयसार परमागम की जीव अधिकार की 14वीं गाथा पे सवेरे उसका 10 नंबर का कलश चला था। 10 नंबर का कलश में वो जितनी जितनी बातें आई वो 14वीं गाथा का उपोदघात का कलश है। तो 14वीं गाथा में क्या आने वाला है उसकी बात 10 नंबर का कलश में आ गई कि आत्मा का स्वभाव परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव उससे रहित जो अपना आत्म तत्व का स्वभाव है ऐसा बताकर अपना परम परिणामिक भाव वो संपूर्ण है और वो लोकालोक को पूर्णपणे जानने की शक्ति वाला आत्मा है। ऐसा जो अपना परिपूर्ण भगवान आत्मा है वो भगवान आत्मा का स्वरूप कोई भी प्रकार के विकल्प होते हैं संकल्प या विकल्प उससे रहित ऐसा अपना परिपूर्ण परमात्मा है ऐसा 10वें कलश में आचार्य भगवान ने जो चर्चा की है अमृतचंद्र आचार्य देव ने वो सवेरे अपनी बात चल चुकी थी। अभी 14वीं गाथा शुरू होती है। 14वीं गाथा जो है वो सम्यक दर्शन की गाथा है और उसमें 5 बोल से अपना स्वभाव अपना चैतन्य तत्व कैसा है उसकी विधि बताएंगे और बद स्पष्ट आदि 5 भाव है जो अपनी पर्याय में चल रहे हैं उससे जो मेरा अबद स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त ऐसा 5 भाव स्वरूप आत्मा जो है वो कैसा है कि बद स्पष्ट आदि भाव उसमें नहीं है और अवध पष्ट आदि भाव स्वरूप अपना शुद्धात्मा है, ऐसा ये गाथा में अस्ति नास्ति करके पूरा अपना चैतन्य स्वभाव की प्रगटता अपनी पर्याय में कैसे हो जाए, ऐसी विधि आचार्य भगवान ने यहाँ 14वीं गाथा में बताई है। आचार्य भगवान एक 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 जो गाथा लिखते जाते हैं उसमें पूज्य गुरुदेव श्री बहुत बार कहते हैं कि 1 से 15 गाथा जो है समझसार की वो मूलभूत गाथाएं हैं। पूज्य गुरुदेव श्री भी रोजाना उसका जो चिंतन करते थे उसमें 47 सती 47 नई 1 से 15 गाथा ये सब का चिंतन उसका सवेरे में चलता रहता था। तो ये 1 से 15 गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें अलग अलग एंगल अलग अलग अपेक्षाओं रख के मूल में अपना स्वभाव बताने की सब गाथाएं है। ऐसा जो ये 14वीं गाथा का विषय है वो अपन शुरू करते हैं। गाथा निकालना भैया, 14वीं पाठ पहले कर लेते हैं। जो पसदी अपाणम अवध पुठम अनणयम नियदम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धणयम व्याहिनी अवध स्पष्ट अनन्य मेजे नियत देखे आत्मने अविशेष अण संयुक्त तेने शुद्ध नय तू जान जे। देखो ये गाथा में शुरुआत ऐसे करते हैं कि ये शुद्ध नय से गाथा सूत्र को कहते हैं। शुद्ध नहीं से गाथा को कहने का उद्यम आचार्य भगवान शुरू करते हैं और इसमें गाथा का अर्थ है जो नहीं आत्मा को बंध रहित परना स्पर्श रहित अन्यपना रहित चला चलता रहित विशेष रहित अन्य के संयोग रहित ऐसे 5 भाव रूप देखते हैं उसे हे शिष्य तू शुद्ध नहीं जान। गाथा का अर्थ कुंदकुंद आचार्य की मूल गाथा है उसका ये गाथा अर्थ है। उसमें वो ये बताते हैं कि आत्मा अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त स्वरूप है तो वो ऐसा आत्मा है, वो ऐसा है तो उसमें क्या नहीं है उससे पहले शुरुआत करते हैं। जो नहीं आत्मा को जो नहीं माने यहाँ कथन शुद्ध नहीं से चलता है, वो 10वें कलश में जो आया था ना यही बात चल रही है, इसमें शुद्ध नहीं से बात चल रही है। शुद्ध नहीं का अर्थ अपन ने सवेरे कर लिया था कि जो ज्ञान अपने स्वभाव को ही देखता हुआ उत्पन्न हो गए उसको शुद्ध नहीं कहा जाता है। ऐसी नहीं नई माने ज्ञान का अंश, वो आत्मा को कैसा देखता है तो वो आत्मा को बंध रहित माने कि बंध भाव जो चल रहा है पर्याय में वो भाव पर्याय में चल रहा है और मेरी वस्तु है वो अबंध स्वरूपी है अबद्ध स्वरूपी है। तो बंध भाव से मेरा आत्मा रहित है, ऐसा बंध से रहित पर का स्पर्श से रहित, पर का स्पर्श से रहित माने यहाँ वो कर्म की विविक्षा है, वो विशेष उपचय नाम के कर्म के परमाणु है, वो कर्म के परमाणु अभी बंधने के लिए रेडी है, हैं कार्मण वर्गणा होती है ना, वो कार्मण वर्गणा में माने कि कर्म का स्टॉक रहता है उसमें से कहीं परमाणु ऐसे होते हैं कि वो कार्मण वर्गणा रूप परिणमने के लिए तैयार होते हैं, वो द्रव्य कर्म रूप नहीं है, वो द्रव्य कर्म रूप होने वाला है अभी। तो ऐसे जो कैंडिडेट बोला जाता है उसको, ऐसा जो कैंडिडेट है वो उसको बोला जाता है पर का स्पर्श, वो स्पर्श का वाच्य वो है, वो स्पर्श बोला जाता है उसको। पर का स्पर्श तो आत्मा को होता नहीं हैं, नई भी स्पर्श का नहीं, पर को स्पर्श नहीं करती, अपना आत्मा का द्रव्य गुण पर्याय पर को स्पर्श नहीं कर सकता, मगर यहाँ जो जो जिससे रहित बताना है उसकी विविक्षा पहले बता रहे आचार्य भगवान कि बंध से रहित, पर का स्पर्श से रहित, अबद्ध स्पष्ट बताया है। अबद्ध माने बंधा हुआ नहीं है, स्पष्ट माने स्पर्शा हुआ नहीं है। तो अबद्ध स्पष्ट माने कि बंध से रहित, पर का स्पर्श से रहित, अन्यपणा रहित। अन्यपणा रहित माने वो खुद स्वभाव अनन्य है, अपने ज्ञान आदि गुणों से अनन्य है, और अन्यपणा रहित माने अन्य 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 जो गति चल रही है, मनुष्य देव तिर्यंच नारक, वो सब व्यंजन पर्याय ली है यहाँ। वो अन्यपणा रहित माने कि जो गतियाँ हैं उससे रहित, नियतम नियतम है, वो नियत है। तो नियत है तो कैसा है कि चढ़ा चढ़ता से रहित, माने कि जो वृद्धि हानि पर्याय में चल रही है वो वृद्धि हानि से अचड़ परमात्मा है, नियत परमात्मा है, शाश्वत परमात्मा है, वो वृद्धि हानि से रहित रहता है, उसको नियत बोला जाता है। अविशेषम विशेषों से रहित, विशेष माने यहाँ जो जो अपने आत्मा में गुण बसते हैं, एक 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 गुण करके अनंत गुण है, ऐसे अपने आत्मा में जीवत्व चिति दसी ज्ञान सुख वीर्य प्रभुत्व विभुत्व सर्वदर्शित्व सर्वगुण सत्र प्रकाश, ऐसी अनंत शक्तियाँ भरी हुई है, उसमें एक 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 गुण का भेद किया जावे, भेद से उसको देखने में आवे, तो उसको विशेष बोला जाता है। तो ऐसा विशेष, ऐसा गुण भेद से भी अपना आत्मा रहित माने अविशेष है। सबसे पहले बंधा हुआ नहीं है, वो क्रम से है सब, ये बंधा हुआ नहीं है, कर्म का स्पर्श नहीं है, गति का परिणमन में नहीं आता, पर्याय का भेद में नहीं आता, गुण भेद में नहीं आता। ये क्रम से सब बात आचार्य भगवान लिखते जाते हैं कि आत्मा जो है बंध से रहित है, पर का स्पर्श से रहित है, अन्यपणा से रहित है, चढ़ाचढ़ता से रहित है, विशेष से रहित है, और अन्य का संयोग से रहित है, असंयुक्त है, माने कि अन्य का संयोग से माने कि आकुलता का जो परिणमन चल रहा है, मोह राग द्वेष की आकुलता जो चल रही है, उससे भी अपना भगवान आत्मा संयुक्त कभी होता नहीं है, वो हमेशा असंयुक्त रहता है। इसलिए वो उसको अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसा पांच भाव वाला एक अभेद रूप एक स्वरूपी आत्मा है। भाव पांच बताते जाते हैं, उसका आत्मा का विशेषण बताया है। वो अबद्ध स्पष्ट बोले, अनन्य बोले, नियत बोले, अविशेष बोले, असंयुक्त बोले, वो सब आत्मा के विशेषण है, वो आत्मा नहीं है, आत्मा के विशेषण है। अगर एक को आप आत्मा मानोगे तो दूसरे चार प्रकार क्या अनंत प्रकार पड़ सकते हैं, ऐसे वो सब प्रकार रह जाएंगे। इसलिए वो पांच भाव स्वरूप एक आत्मा की अनुभूति कैसे होवे वो बता रहे हैं। पांच भाव पहले सिद्ध करते हैं, पहले द्रव्य का भाव अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त, और पर्याय का भाव कि जो बंधा हुआ है स्पर्श वाला है, माने कि गति वाला है, पर्याय भेद वाला है, गुण भेद वाला है, मोह से संयुक्त है, वो पर्याय का स्वरूप बताते हैं। और ये अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त है, वो द्रव्य का स्वरूप बता रहे हैं। तो द्रव्य और पर्याय दोनों पृथक पृथक कैसे है वो बता के अबद्ध स्पष्ट की चर्चा और बद्ध स्पष्ट की चर्चा ये 14वीं गाथा में करेंगे। मगर यहाँ जो गाथा अर्थ में कहते हैं कि जो नहीं माने कि शुद्ध नहीं, अपने आत्मा को कैसे देखती है, अपने आत्मा को, अपने आत्मा कैसा है ऐसी शुद्ध नहीं कैसे देखती है, तो कि वो नास्ती से पहले कथन करते हैं। पहले क्यों नास्ती से कथन करते हैं, ये रहित 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 क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसमें ही अपनी अस्थि जीव ने अनादि से मान रखी है, उसको नास्ती बतानी नहीं है, उसको ले जाना है अस्थि में, मगर वो ऐसा ही उसके अभिप्राय में, उसके ज्ञान में, उसकी श्रद्धा में चल रहा है कि मेरे में कर्म का उदय आ रहा है, कर्म से स्पर्शित हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, पर्याय भेद मेरा है, गुण भेद मेरा है, मोह से मैं संयुक्त हूँ, ऐसा उसको पर्याय का माने कि जो विभाग है उसके ऊपर दृष्टि पड़ी है, उसको ही देखता रहता है। इसलिए उसको ऐसा ही लगता है कि मैं तो पर्याय भेद वाला, गुण भेद वाला, मोह वाला, ऐसा ही मेरा आत्मा हो गया है। इसलिए यहाँ आत्मा को बताने के लिए पहले जो जो विकल्प उसके ज्ञान में चल रहे हैं पर्याय भेदों के, उससे उसका आत्मा रहित है, ऐसा पहले में पहले कुंदकुद आचार्य देव गाथा अर्थ में कहते हैं। और उसका विस्तार अभी अमृतचंद्र आचार्य देव टीका में करेंगे। तो यहाँ जो रहित 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 बता रहे हैं वो किससे रहित है, तो के पर्याय में होने वाले जितने विभाव प्रकट हो रहे हैं उससे मेरा आत्मा रहित है, मेरे से परिपूर्ण है, मेरे ज्ञान दर्शन आदि गुणों से सहित है, और अनंत पर्याय से रहित, अनंत गुणों से सहित, ऐसा मेरा त्रिकाली चैतन्य परमात्मा है। ऐसा ज्ञान का अंश अपने आत्मा को अस्ति से अनंत गुणात्मक अभेद देखता है, और नास्ति से ये सब पांचों भेद जो पर्याय के दिखाए उससे रहित देखता है। तो ये रहित और सहित की रमत है इसमें। ये रहित और सहित की रमत जिसको पता चल जाए ना, उसको आत्मा कैसा है वो ख्याल में आ जाता है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ सबसे पहले रहित की चर्चा से उठाते हैं कि तूने जहाँ तेरी अस्ति मान रखी है ऐसा तू नहीं है, उससे तू रहित है, और अपनी अनंत शक्तियों से सहित है, ऐसा बताकर यहाँ चौदहवीं गाथा की टीका अभी अमृतचंद्र आचार्य देव शुरू करते हैं। देखो ये ऐसा है कि स्वभाव जो है ना वो किससे रहित है, किससे सहित है, ये बताने की सचमुच जरूरत नहीं रहती। फिर भी मुमुक्षु जीव माने कि अज्ञानी जीव उसकी समझ में डायरेक्ट ये बात नहीं आ सकती, इसलिए आचार्य भगवान भी रहित और सहित का प्रयोग करते हैं। सप्तम गुणस्थान में निर्विकल्प दशा में झूलने वाले आचार्य भगवान, निरंतर प्रचुर स्व संवेदन में वर्तने वाले आचार्य भगवान, वो जब विकल्प में आते हैं तो विकल्प में आते समय उसको ऐसा दिखता है कि ये आत्मा किससे रहित है वो मैं पहले लिख दूं। इसलिए वो लिखते हैं कि वो जो आत्मा है वो बंधा हुआ नहीं है, कर्म से स्पर्शा हुआ नहीं है, अन्य अन्य गति में गया नहीं है, पर्याय भेद रूप हुआ नहीं है, गुण भेद रूप हुआ नहीं है, मोह से संयुक्त हुआ नहीं है। ऐसा क्यों लिखते हैं? ब्रह्मणा जीव की निकालने के लिए, जहाँ सहित की पर्याय से सहित की भ्रांति चल रही है वो निकालने के लिए पर्याय से रहित बताकर अपना स्वभाव अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त है। ऐसा आत्मा को तू अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा न जान करके एक रूप आत्मा हूँ ऐसा जान, ऐसा ये नहीं आत्मा को प्रसिद्ध करती हुई उदित होती है, ऐसा यहाँ गाथा अर्थ में कहते हैं। अभी उसकी टीका है। निश्चय से माने वास्तव में, माने कि सत्यता से, निश्चय से माने निश्चय नहीं से नहीं, क्योंकि निश्चय नहीं से ऐसा, व्यवहार नहीं से ऐसा, ऐसा यहाँ नहीं कहना चाहते हैं, यहाँ स्वभाव से कहना चाहते हैं कि स्वभाव कैसा है तेरा। तो कि निश्चय से अबद्ध अस्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसा आत्मा की जो अनुभूति वो शुद्ध नहीं है। अभी यहाँ ऊपर जो लिखा उसमें अनुभूति की बात नहीं आई थी गाथा अर्थ में, वहाँ तो नई कैसा आत्मा को जानती है इतनी ही बात, माने कि पांच बद स्पष्ट आदि भावों से रहित करके अपना आत्मा कैसा है ऐसा बताया था। अभी अमृतचंद्र आचार्य देव ने आगे बढ़ के उसमें अनुभूति डाली है। देखो कहते हैं निश्चय से अबाध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसा आत्मा की जो अनुभूति, वो अनुभूति होवे उसको शुद्ध नहीं बोली जाती है। शुद्ध नहीं से आत्मा को देखना और आत्मा को शुद्ध नहीं से देखे तो उसका फल क्या आता है, तो के फल उसका अनुभूति आती है। और जब अनुभूति उसका फल आता है तब वास्तविक उसको पता चलता है कि मेरा आत्मा बद्ध, स्पष्ट आदि पांच भावों से रहित है। पहले विकल्प में ख्याल आता है कि मेरा आत्मा बद्ध, स्पष्ट आदि भावों से रहित है, ऐसा विकल्प में ख्याल आने पर वो नहीं से जब अपने आत्मा को देखता है तब आत्मा को देखने से क्या होता है कि आत्मा को देखने से अनुभूति का जन्म होता है। अनुभूति माने स्वसंवेदन का जन्म होता है। वो स्वसंवेदन से वो प्रमाण करता है कि मेरे आत्मा में और मेरी अनुभूति में कोई बद्ध, स्पष्ट आदि पांच भाव है ही नहीं। अनुभूति के पहले वो विकल्पात्मक दशा में निर्णय करता है। वो निर्णय का फल अनुभूति आती है। वो निर्णय किसका करता है कि निर्णय में द्रव्य कैसा है ऐसा भी निर्णय करता है और पहले पर्याय कैसी है ऐसा भी निर्णय करता है। ऐसे द्रव्य पर्याय का निर्णय करता है पहले में। पहले अभी मेरी पर्याय में बद्ध, स्पष्ट आदि पांच भाव चल रहे हैं और उसी समय, जिस समय ऐसे बद्ध, स्पष्ट आदि पांच भाव है उसी समय मेरा नायक चिदानंद मूर्ति आत्मा, अभेद आत्मा, अविनश्वर आत्मा, शुद्ध आत्मा, एक रूप आत्मा, अबद्ध, स्पष्ट आत्मा, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त आत्मा की जो किसी में लेपित ही नहीं हुआ, पर्याय भेद रूप कभी हुआ ही नहीं, वो द्रव्य द्रव्य रूप ही रहा है, ऐसा निर्बोध जो आत्मा है, ऐसा आत्मा उसे ख्याल में निर्णय के काल में, वो निर्णय में उसको पता चलता है कि आत्मा का स्वभाव ऐसा है और पर्याय में ऐसा बद्ध, स्पष्ट आदि भाव अभी चल रहे हैं। पहले में पहले वो दोनों का स्वीकार करता है। ये स्वीकार करने के बाद में उसका निर्णय में यथार्थता आती है। वो यथार्थता आती है तब वो पर्याय का जो विषय था, पर्याय में जो बद्ध, स्पष्ट आदि भाव चल रहे थे वो निर्णय की भूमिका थी। वो निर्णय की भूमिका में से वो एक यथार्थ निर्णय के पर आ जाता है। वो यथार्थ निर्णय पर जब जीव आता है तब वो पर्याय का भेद में जो जो बद्ध, स्पष्ट आदि भाव चल रहा था उसको फिर याद नहीं करता है। वो उसने याद पहले कर लिया निर्णय के काल में, अभी उसको भूलने के लिए यथार्थता में आता है। तो वो यथार्थ निर्णय में जब आता है तब उसको अकेला आत्मा कैसा है कि वो आत्मा अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयुक्त, ऐसा पांच भाव स्वरूप एक आत्मा है, ऐसी एक अपना शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा की निर्णय के काल में यथार्थता आती है। ये यथार्थता जब आती है उसे कहा जाता है कि ये जीव ने द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु जैसी थी ऐसी मानकर, ऐसा निर्णय करके, फिर पर्याय भेद को गौण करके, अपना द्रव्य स्वभाव को मुख्य करके, वो यथार्थता अपना ज्ञायक भाव कैसा है, अपना भूतार्थ स्वभावी आत्मा कैसा है, अपना अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, नियत, विशेष, संयुक्त मई, ऐसा पांच भाव स्वरूप एक आत्मा कैसा है, ऐसा निर्णय में उसकी यथार्थता आई है। ऐसी निर्णय में यथार्थ आने के बाद में उसका जब विचार मंथन प्रयोग चलता है तब उसका आत्मा की अनुभूति का काल पकता है। इसलिए यहां ये 14वीं गाथा है उसमें ये कहना चाहते हैं कि रहित पूर्वक सहित कैसा होता है, जहां तूने सहित बद्ध, स्पष्ट आदि भाव मान रखा है वहां उसका तुझे पहले ज्ञान कराते हैं, पर्याय का ज्ञान करा के फिर तुझे वो पर्याय भेदों से रहित तेरा स्वभाव कैसा है वो बताते हैं। वो पर्यायों से रहित स्वभाव तुझे बताता है, ऐसा रहित स्वभाव तुझे बताया तब तुझे वो रहित स्वभाव का निर्णय हुआ, उसकी निर्णय में यथार्थता आई। वो यथार्थ निर्णय वाला जो जीव है वो जीव कैसा होता है कि उसको, ये जीव को ज्ञान में इतनी मध्यस्थता आ जाती है, इतनी मध्यस्थता आ जाती है कि ज्ञान में वो दोनों द्रव्य पर्याय की यथार्थता रखता है और श्रद्धा में एकदम निसंग होता है। ज्ञान में मध्यस्थ रहता है, श्रद्धा में निसंग रहता है। ज्ञान में द्रव्य पर्याय स्वरूप आत्मा होने पर भी, वो पर्याय का ज्ञान होता होने पर भी, उसका निर्णय में यथार्थता द्रव्य स्वभाव की आ जाती है और श्रद्धा में द्रव्य प्रत्यय भी निसंग रहता है और पर्याय प्रत्यय भी निसंग रहता है। ऐसे श्रद्धा ज्ञान का सुमेर चलने लगता है तब यहाँ वो निर्णय वाला जो ज्ञान है वो आगे बढ़ते 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 वो श्रद्धा का विषय उसके हाथ में आया तो यही मैं परमात्मा हूँ ऐसा श्रद्धा में अहम करके उसकी अनुभूति शुरू हो जाती है। ऐसी अनुभूति की बात यहाँ बता रहे हैं। अनुभूति अपनी सबरे बात चली थी कि पर्याय का भेद को आप देखो, पर्याय में अनुभूति को देखो तो वो परद्रव्य है। क्या है? पर्याय का भेद को देखो आप तो वो परद्रव्य में जाता है। अनुभूति हो, केवल ज्ञान की पर्याय हो, कोई भी शुद्ध पर्याय हो, भेद पर्याय का देखा तो वो परद्रव्य में चला जाता है। और पर्याय द्रव्य से अभेद हुई उसको बोला जाता है कथनचित सहित, पर्याय से रहित ख्याल में आता है तब एक व्यवहार का निषेध करता है जब जीव, तब दूसरा सम्यक प्रकार का व्यवहार खड़ा होता है। एक व्यवहार का निषेध कब करता, कौन सा व्यवहार का निषेध करता है कि बद स्पष्ट आदि भाव सब अभूतार्थ है, वो मेरे में है ही नहीं, ऐसे व्यवहार का निषेध करता है। ऐसा विवेक व्यवहार का निषेध करके मैं शुद्ध स्वभावी चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं नायक परमात्मा हूँ, मैं अखंड अनादि अनंत चैतन्यमय सत्ता हूँ, ऐसा अभेद स्वभाव का निश्चय करता है, निषेध करके विधि में आता है। जो विधि में आया तो एक व्यवहार का निषेध करके अपना स्वभाव जो निश्चय था वहां उसने अपना अहम स्थापित कर दिया, तो वो अहम स्थापित करने के टाइम में अनंत गुण की अनंत पर्याय, अनंत गुण की अनंत पर्याय वो कथनचित आत्मा से सहित हो जाती है। वो सहित हो जाती है, सहित माने क्या? द्रव्य और पर्याय दो एक तो कभी नहीं हो सकते। अगर द्रव्य और पर्याय एक समय के लिए भी एक हो जाए तो या तो पर्याय को द्रव्य होना पड़े या तो द्रव्य को पर्याय होना पड़े, एक बात। दूसरी बात कि अगर वो दोनों एक हो जाए तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए या तो द्रव्य में उत्पाद भी चालू हो जाए। इसलिए दोनों में से कोई एक कभी नहीं हो सकता। पर्याय पर्याय रूप रहती है, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है। निर्विकल्प दशा के काल में असंख्य समय तक अनुभूति चलती होने पर भी वहां भी उत्पाद व्यय का परिणमन निरंतर चलता रहता है क्योंकि पर्याय समयवर्ती होती है, मगर उत्पाद होते ही द्रव्य की अभेदता करके परिणमती है। उत्पाद होते ही द्रव्य से अभेद होकर परिणमती है। वो निर्विकल्प का दशा का काल ऐसे ही चलता रहता है। जैसे उत्पाद हुआ वो द्रव्य के साथ अभेद होके ही परिणमा, उसको बोला जाता है पर्याय से रहित। जब उसने माना तब द्रव्य से पर्याय सहित उसकी कथनचित निर्मल पर्याय हो गई, तो वो निर्मल पर्याय कथनचित सहित हुई, वो सम्यक प्रकार का व्यवहार है। जब एक बदस्पष्ट आदि व्यवहार का निषेध करता है और द्रव्य में अपने भाव की स्थापना करता है तब एक अनुभूति का सम्यक प्रकार का व्यवहार खड़ा होता है। वो आश्रयभूत तत्व तो एक ही है, त्रिकाली द्रव्य, उसके आश्रय से अनुभूति चलती है। तो वो अनुभूति में वो अनुभूति चलती है, वो अनुभूति जो है ना उसका आप भेद कर दो कि पर्याय में अनुभव हुआ, पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, पर्याय में माने कि स्व संवेदन आया, पर्याय में शुद्ध नहीं हुई, तो वो ऐसे पर्याय को अनुभूति के काल में जो देखने जाता है वो पर्याय का भेद परद्रव्य हो जाता है, उसको अनुभूति नहीं रहती है। अभी वो पर्याय का भेद को न देखे और अभेद जो उसका परिणमन हुआ, यहाँ वो चर्चा हुई चल रही है,
यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं निश्चय छे अबद्ध अस्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसा आत्मा की अनुभूति वो शुद्ध नहीं है। अनुभूति की चर्चा कर रहे हैं आचार्य भगवान, ऐसा आत्मा को देखे तो क्या होता है, तो अनुभूति होती है। तो वो अनुभूति कैसी है कि वो अनुभूति वो परिणाम रूप हो गई है, वो अपरिणामी के साथ उसका परिणाम जुड़ गया है, वो परिणामी हो गई है, वो परिणामी में अपरिणामी बसता है, परिणाम में अपरिणामी नहीं है। परिणाम आप देखो तो वो तो भेद रूप हो गया, वो भेद है, वो तो परद्रव्य है भाई, वो पर्याय का भेद से देखा तो वो परद्रव्य हो गया। अभी वही पर्याय को आप अभेद करके देखो वो पर्याय को, तो वहां परद्रव्य नहीं है, वो वहां तो अनुभूति वो आत्मा है। वो अनुभूति को क्या कहते हैं यहां कि वो अनुभूति वो आत्मा है। शुद्ध नहीं कहो, अनुभूति कहो कि आत्मा कहो, वो अनुभूति में वास्तव में कोई गुणस्थान नहीं होता, वो अनुभूति में गुणस्थान नहीं है, वो गुणस्थान का भेद तो विकल्प में आते हैं तब खड़ा होता है। इसलिए चौदह गुणस्थान को जड़भाव क्यों बोला जाता है, चारों भाव है वो सभी गुणस्थान है, वो गुणस्थान ना तीत होता है तब सिद्ध दशा आती है। तो सिद्ध दशा में अनुभूति नहीं है क्या, चालू है सिद्ध दशा में अनुभूति निरंतर, गुणस्थान तो है नहीं वहां, गुणस्थान अनुभूति रूप नहीं होता, अनुभूति गुणस्थान रूप नहीं होती, अनुभूति आत्मा होता है ऐसा कहते हैं यहां। गुणस्थान से मत देखो कि अभी चतुर्थ गुणस्थान में अनुभूति चल रही है, अभी श्रावक को पंचम गुणस्थान में अनुभूति चल रही, गुणस्थान में अनुभूति होती नहीं, गुणस्थान तो भेद रूप होता है, वो अभेद नहीं होता गुणस्थान, अभेद जो होता है वो गुणस्थान नहीं होता, वो अनुभूति होती है और वो आत्मा होता है, वहां गुणस्थान है ही नहीं वहां, ऐसा यहां अनुभूति का प्रकरण बता रहे हैं। वो हाँ वो इसमें आता है, वो गुरुदेव ने भी लिया है इसमें अलिंगन, वो बात वही है ना कि अनुभूति माने कि वो पर्याय वो उसको स्वीकार ही नहीं करती। उसमें 18 19 और 20 तीन बोल लिया है अलिंगरण में, 18 बोल में गुण भेद को निकाल दिया है, 19वां बोल में पर्याय भेद को निकाल दिया है ऐसा द्रव्य बताया है, और 20वां बोल में पर्याय ऐसा कहती है कि मैं ही परिपूर्ण हूं, मेरे को द्रव्य की क्या आवश्यकता है, मैं पराधीन थोड़ी हूं कि मैं द्रव्य का आश्रय लूं तो मैं शुद्ध हूं, मैं शुद्ध मेरे से होती हूं, तब कहना है तो कहो कि मेरा लक्ष्य कहां है, मैं तो मेरे से शुद्ध होती हूं, ये 20वां बोल में कहे। इसलिए द्रव्य पर्याय का यथार्थ स्वरूप अपने ज्ञान में बराबर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जब तक ये द्रव्य पर्याय का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट नहीं होता ना, तब कोई भी चीज का विकल्प ही चलता रहता है और विकल्प से पार हो ही नहीं सकता जी। इसलिए द्रव्य की सत्ता क्या है, पर्याय की सत्ता क्या है, पर्याय का लक्षण जो अपन ने सबे उत्पाद व्यय लिया था, और पर्याय का लक्षण उत्पाद व्यय, द्रव्य का लक्षण परम पारिणामिक भाव ध्रुव, वो लक्षण से उसकी सत्ता को देखना चाहिए, उसको उसके भेद रूप भावों से उसके विशेष भावों से नहीं देखना चाहिए, वो विशेष भावों से देखता रहता है, इसलिए वो विशेष भावों का निषेध कराते हैं आचार्य भगवान कि तू सबसे पहले द्रव्य और पर्याय दोनों का स्वभाव से देखना तू सीख जा। द्रव्य का स्वभाव उसका लक्षण ध्रुव परम परिणामिक भाव है, और पर्याय का स्वभाव उत्पाद व्यय और उसका लक्षण उत्पाद व्यय है, वो उत्पाद व्यय बिना की कोई पर्याय नहीं होती, और ध्रुव कभी परम परिणामिक भाव लक्षण बिना का नहीं होता। तो ऐसे लक्षण से ही उसको देख, कोई भी पदार्थ को देखना हो तो उसकी पहचान उसके लक्षण से ही होती है, लक्षण के बिना पदार्थ की पहचान ही नहीं हो सकती। कोई कहे कि भाई ये चीनी है तो वो तो सफेद है, नीमक है वो भी सफेद है, और फटकड़ी है वो भी सफेद है, ऐसे उसकी पहचान ही नहीं हो सकती पदार्थ की, उसके लक्षण से पहचान हो सकती है, उसके स्वाद से पहचान हो सकती है। आप मुंह में रखो उसको, आपको कौन सा स्वाद आया तुरंत आप बोलोगे ये चीनी का स्वाद है, ये नमक है, ये फटकड़ी है, तो ये उसकी लक्षण से पहचान हो सकती है कोई भी पदार्थ की, ऐसे लक्षण से पदार्थ की सिद्धि करना, ऐसे नहीं कि पर्याय है तो पर्याय को परद्रव्य भी बोला और पर्याय को उत्पाद्य भी बोला। द्रव्य से देखो तो उत्पाद्य पर्याय में होने पर भी वो पर्याय परद्रव्य है, उसका स्वभाव नहीं है द्रव्य का, वो उत्पाद्य है। मगर पर्याय से देखो तो उसका सम्यक दर्शन भी स्वभाव नहीं है और उसका मिथ्या दर्शन भी स्वभाव नहीं है पर्याय का। पर्याय का स्वभाव उत्पाद्य है, वो उत्पाद्य की विशेषता जो प्रकट होती है उसको जो देखता रहता है उसका निषेध कराते हैं। वो निषेध कराते समय भी उत्पाद्य तो ऐसा नैसा चलता रहता है, वो तो स्वभाव है उत्पाद्य। तो द्रव्य का स्वभाव ध्रुव, पर्याय का स्वभाव उत्पाद्य, वो कभी मिट नहीं सकता। देखो अभी 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 पर्याय में क्या चल रहा है, मति श्रुत ज्ञान चल रहा है। मति श्रुत ज्ञान की पर्याय जीव को चल रही है ना, केवल ज्ञान तो अभी है नहीं। अवधि मन पर्यायवाद तो कोई होता नहीं, अभी मुनिराज को होता है वो तो है नहीं है, तो अभी मति श्रुत की पर्याय चल रही है सब जीव को। तो अभी मति श्रुत ज्ञान अभी चल रहा है, तो मति श्रुत ज्ञान तो कहाँ चल रहा है, पर्याय में चल रहा है। तो अभी बोला ऐसा जाता है कि ये मति श्रुत ज्ञान वाला जीव है, मति श्रुत ज्ञान वाला जीव है। अभी मति श्रुत ज्ञान वाला जीव है कि ज्ञान वाला जीव है? अभी मति श्रुत ज्ञान लक्षण नहीं होता। अभी मति श्रुत ज्ञान को आप लक्षण कहोगे, आपने बना दिया कि मेरे में तो ये भव में मति श्रुत ज्ञान ही चलने वाला है, तो मति श्रुत ज्ञान को लक्षण कह दो, तो बिल्कुल नहीं होता लक्षण। लक्षण की व्याख्या ही है वो अनादि अनंत होता है। पर्याय में ज्ञान अनादि अनंत है, मति श्रुत अनादि अनंत नहीं है। अच्छा केवल ज्ञान ले लो, केवल ज्ञान भी पर्याय में अनादि अनंत नहीं है। मति श्रुत के बाद में केवल ज्ञान होता है, तो केवल ज्ञान को भी लक्षण नहीं बोला जाता क्योंकि पूर्व में नहीं था। मति ज्ञान को भी लक्षण नहीं बोला जाता क्योंकि वो कायम नहीं रहता है। तो लक्षण किसे बोले, तो कि लक्षण ज्ञान को बोले पर्याय में, वो ज्ञान लक्षण वाला आत्मा है। और त्रिकाल स्वभाव ज्ञानमय चैतन्य अनंत गुणात्मक अभेद अखंड चैतन्य परमात्मा है। पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न पूछा, वो 140 नंबर का कलश आता है उसमें आया कि ज्ञान के पांचों भेद झूठे हैं। राजमल जी साहब ने कलश टीका में लिख दिया कि ज्ञान के पांचों भेद, केवल ज्ञान को भी ले लिया, चार नहीं बोला वहां, मति श्रुत अवधि मन पर्याय, केवल पांचों भेद झूठा, झूठा ही बोलते हैं वहां। तो 108 बार लिखा है कलश टीका में, व्यवहार नहीं झूठा है, व्यवहार नहीं झूठा है, व्यवहार नहीं झूठा है। आचार्य भगवान होते हैं ना, वो ऐसी भाषा यूज करते हैं, असत्यार्थ और अभूतार्थ। अभी गृहस्थ ज्ञानी होते हैं वो ऐसी भाषा यूज करते हैं कि झूठा है, इसलिए गृहस्थ को समझ में आ जाए। अभूतार्थ और असत्यार्थ बोले ने तो उसको पता ही नहीं चले कि ये झूठा बोल रहे हैं, इसलिए कलश टीकाकार ने सब जगह झूठा 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 लिख दिया। तो गुरुदेव ने वहां फरमाया कि पांचों भेद झूठे हैं, पांचों भेद झूठे कलश टीका में लिखा है। तो गुरुदेव को प्रश्न किया श्रोता ने कि भाई ये आप पांचों भेद झूठा बोल रहे हो, तो पर्याय को हम देखें कैसे, पर्याय का स्वभाव क्या है? ये अनुभूति की अपनी चर्चा चल रही है, इसमें ये इतना विस्तार है अनुभूति में, और अनुभूति कैसे आत्मा को देखती है ये भी बात यहाँ आएगी अभी। तो ये गुरुदेव को प्रश्न पूछा, तो गुरुदेव ने बोला कि वो झूठे हैं, झूठे हैं। तीन बार प्रश्न पूछा वो श्रोता ने, गुरुदेव ऐसे ही बोलते रहे वो झूठा है, पांचों भेद झूठा है। फिर वो श्रोता ने बोला कि अभी आप सच्चा नाम तो बता दीजिए साहब, ये झूठा झूठा ही कह रहे हो, अभी सच्ची बात तो बोल दो, सच्चा नाम क्या है उसका? तो गुरुदेव ने बोला कि उसका सच्चा नाम ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की पर्याय माने के ज्ञान, उसको भेद से मत देखो, मति श्रुत अवधि मन पर्याय केवल, वो तेरा स्वरूप ही नहीं है। यहां बता रहा है कि शुद्ध नहीं आत्मा को अवस्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त देता देखता है, वो शुद्ध नहीं माने क्या कि जो ज्ञान का अंश मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा देख ले उसका नाम शुद्ध नहीं हो गया। ये ज्ञान का अंश में होता है, मति श्रुति में नहीं होता है, ऐसा समझना। ज्ञान आत्मा को देखता है तब अनुभूति होती है, तब उसका नाम भावश्रुत ज्ञान पड़ता है। भावश्रुत ज्ञान से आत्मा देखने में नहीं आता। ज्ञान में आत्मा जानने में आवे तब उसका नाम भावश्रुत पड़ता है। तो क्योंकि भावश्रुत ज्ञान से आत्मा को देखना, क्योंकि भावश्रुत ज्ञान तो है ही नहीं, अभी कहां से देखे आत्मा को, अभी भावश्रुत तो प्रकट ही नहीं हुआ, अभी तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का भेद प्रकट हो रहा है और उसमें ज्ञान बस रहा है। वो ज्ञान कैसा है कि वो ज्ञान पर्याय का लक्षण है, वो उत्पाद व्यय वाला है, वो ज्ञान है और उसकी विशेषता रूप मति श्रुत अवधि मन प्रिय केवल प्रकट होता है, वो उसकी विशेषता है, वो ज्ञान नहीं है, वो विशेष ज्ञान है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान केवल ज्ञान ये सब विशेष है और ज्ञान सामान्य है। वो ज्ञान में आत्मा बसता है और वो ज्ञान में आत्मा ख्याल में आता है तब उसका नाम शुद्ध नहीं पड़ता है। तो कहा जाता है शुद्ध नहीं से आत्मा को जाना, कहा जाता है कि भावश्रुत ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, कहा जाता है कि अनुभूति हो गई। अभी अनुभूति हो गई, आत्मा को जान लिया, तो अनुभूति को अलग से बताने की कोई जरूरत है कि आत्मा को ही बताने की जरूरत है? तो के भाई आचार्य भगवान जो बता रहे इस तरीके से ही तू विचार किया कर। आचार्य भगवान ने जो कहा है कि निश्चय से अबद्ध अस्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त ऐसा आत्मा की जो अनुभूति वो शुद्ध नहीं है। आत्मा तो शुद्ध नहीं स्वरूप है मगर उसकी अनुभूति उसको यहां शुद्ध नहीं कहा जाता है। ये रहित पर्याय से रहित जब देखता है, पर्याय से रहित पर्याय में जो स्पष्ट आदि भाव चल रहा है उससे रहित अपना आत्मा है ऐसा देखता है, ऐसा व्यवहार को निकाल देता है। पर्याय भेद को व्यवहार बोला जाता है, वो व्यवहार को बाध कर देता है, वो व्यवहार मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो शुद्धात्मा निश्चय स्वभावी हूं, ऐसा पर्याय को माने की बात कर देता है। द्रव्य में पर्याय का सर्वथा अभाव है ऐसा उसके ख्याल में जब आता है वो व्यवहार को निकालता है और आत्मा में हूं ऐसा अहम करता है, तब अनुभूति का नाम सम्यक प्रकार का व्यवहार है। वो अनुभूति की पर्याय भी व्यवहार है और बदस्पष्ट आदि पर्याय भी व्यवहार है। निश्चय माने कि स्वभाव तो अकेला शुद्ध चैतन्य परमात्मा है, अपरिणामी आत्मा है, त्रिकाल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, वो भी त्रिकाल आत्मा भी अनुभूति स्वरूप है। अनुभूति स्वरूप माने ज्ञान स्वरूप है। 17-18 गाथा में आया है कि अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, तो वहां क्या बताना है? बाल गोपाल सबको अनुभव में आ रहा है, वो कौन सा ज्ञान की चर्चा है? वहां कौन सा ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है? मति श्रुत ज्ञान में तो वेदन हो जाए, तो वेदन तो है नहीं वहां पे, केवल ज्ञान तो है नहीं, अभी अवधि मन पर ये की तो चर्चा ही नहीं होती है। भगवान आत्मा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको ज्ञान में अनुभव में आ रहा है माने जानने में आ रहा है, वो कौन सा ज्ञान है? तो कि वो उत्पाद व्यय लक्षण वाला मात्र ज्ञान है जिसमें कोई उपाधि लागू पड़ती ही नहीं, ऐसा ज्ञान पर्याय का स्वभाव है और ज्ञान का पिंड वो द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा द्रव्य पर्याय का स्वरूप है। बाकी का जितने बद स्पष्ट आदि भाव चल रहे हैं वो सब कर्मकृत उपाधि में जाता है। जितने भी चल रहे हैं भाव, बद स्पष्ट आदि भाव हो या तो वहां अनुभूति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो जाए, आगे 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 चलते 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 गुणस्थान आगे बढ़ जाए, मुनि दशा का गुणस्थान आ जाए, अप्रमत दशा आगे चलती रहे, वो जितने भी गुणस्थान के भेद है वो सबको कर्म सापेक्ष में डाल दिया है। और यहाँ अनुभूति माने की अनुभूति माने आत्मा, इसमें लिखते हैं देखो, निश्चय से अबद स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा आत्मा की जो अनुभूति वो शुद्ध नहीं है और वो अनुभूति आत्मा ही है। इस रीत से आत्मा एक ही प्रकाशमान है। तो क्या ये तो दो हो गया, एक तो शुद्ध त्रिकाल आत्मा और एक अनुभूति वाला आत्मा, ये आत्मा तो दो ही हो गया। तो के वहां अनुभूति और अनुभूति का विषय का कोई भेद ही दिखता नहीं है, वो कोई भेद दिखता नहीं है, उसको कहा जाता है एक ही आत्मा प्रकाशमान है। द्रव्य गुण पर्याय किसी को भी देखो वहां आत्मा ही है, वहां ना तो पर्याय का भेद है, वहां तो ना गुण का भेद है, ना तो द्रव्य पर्याय में दिखता है, ऐसा भी नहीं है। वहां मात्र आत्मा है, मात्र आत्मा है, मात्र आत्मा है। जैसे सोगानी जी ने लिखा है ना, सोगानी जी ने वो आखिरी के तीन पत्र लिखे, उसमें लिखा है सोगानी जी ने, बहुत बार मैं कहता हूं, वो सोगानी जी की तो द्रव्य दृष्टि की मास्टरी, दृष्टि का कोई पर्याय से प्रश्न पूछे तो वो द्रव्य से ही जवाब देवे, वो तो उसकी माने की शैली ही हो गई। माने की सोगानी जी माने त्रिकाली द्रव्य, सोगानी जी माने त्रिकाली द्रव्य, द्रव्य दृष्टि वाले नहीं, त्रिकाली द्रव्य, ऐसा एक उसकी स्थिति हो गई। ऐसे सोगानी जी ने उसके बोल पढ़ो आप तो एकदम द्रव्य के सिवा आपको कुछ भाषित ही नहीं होवे। एकली शुद्ध आत्मा का अवतरण उसने अपनी माने कि तीसरा भाग जो था उसमें कर दिया है। ऐसे सोगानी जी ने एक बात बहुत अच्छी लिख दी, वो इसके अनुरूप है, इसलिए मैं आपको ये बताता हूँ। सोगानी जी ने लिखा, तीन पत्र लिखे हैं, आखिरी के तीन पत्र वो अपने जो प्रेमचंद जी दिल्ली वाले थे ना, उसके साथ भी उसका पत्र व्यवहार चलता था, उसको भी लिखे उसने पत्र, तो उसमें लिखा उसने, कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं बासतु है। कौन कर्ता, कौन कर्म, कौन क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं बासतु है। अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति धरे ही है, अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति से पड़ी है अंदर में। कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं बासतु है, अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति धरी है। याही के गवेशी ज्ञान माही लखी लीजिए, याही की लखनी में अनंत सुख भरियो है। जो मैं लिखता हूं ये कि कर्ता कर्म क्रिया का कोई भेद बासित ही नहीं होता, अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति रही है, मेरी अकर्तृत्व शक्ति है, उसके में ना तो कर्तापना है, ना तो कर्मपना है, ना तो कोई क्रिया है, मैं तो निष्क्रिय शुद्ध पारिणामिक चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसा अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति से अंदर में पड़ी हुई है। याही के गवेशी ज्ञान माही लखी लीजिए, याही की लखनी में, लखनी में माने कर्ता कर्म क्रिया भेद नहीं है और अकर्तृत्व शक्ति अखंड रीति धरे ही है, उसमें अनंत सुख भरियो है। माने कि कर्ता कर्म क्रिया का भेद अनुभूति के काल में कोई भाषित होता ही नहीं है। जो भेद भाषित हो गया तो वो अनुभूति परद्रव्य हो जाती है। इसलिए अनुभूति कहो, शुद्ध नहीं कहो, आत्मा कहो, इस रीति से आत्मा एक ही प्रकाशमान है। कोई ध्येय वाला आत्मा अलग और ज्ञेय हुआ वो आत्मा अलग, तो कि आत्मा एक ही है, ध्येय पूर्वक ज्ञेय हो गया, उसमें कर्ता कर्म क्रिया का कोई भेद भाषित होता ही नहीं है। इस रीति से देखे तो ये परिणामी में अपरिणामी बस रहा है, परिणाम में अपरिणामी नहीं होता। परिणाम जब द्रव्य की सन्मुख होकर परिणमन करता है कि ये मैं हूं, तब वो परिणामी बन जाता है, वो परिणामी में अपरिणामी बसता है। वास्तव में द्रव्य से द्रव्य को देखो तो अपरिणामी में अपरिणामी बसता है, मगर उसकी अनुभूति का प्रकरण इस यहां चल रहा है तो परिणामी में अपरिणामी बसता है। परिणाम में नहीं, परिणाम का भेद में नहीं, सायिक भाव में भी नहीं, वो परिणामी में अपरिणामी बसता है। उसका नाम भी सचमुच में कोई भाव नहीं है, वो आत्मा ही है, वहां कोई गुणस्थान लागू ही नहीं पड़ता, अनुभूति वो आत्मा। ऐसा यहां कहना चाहते हैं कि अनुभूति आत्मा है, इस रीति से आत्मा एक ही प्रकाशमान है। शुद्ध नहीं कहो या आत्मा की अनुभूति कहो या आत्मा कहो, एक ही है, वो जुदा नहीं है, उसको आप जुदा, अनुभूति को जुदा देखो, आत्मा को जुदा देखो। ऐसे विभाग कब करने में आता है कि जब द्रव्य दृष्टि करानी हो, तब तो अनुभूति नहीं है, मगर दृष्टि का विषय बताना हो तो उत्पाद व्यय से ही रहित है आत्मा। उत्पाद व्यय से रहित कह दिया ना, तो सभी पर्याय आ गई, उससे रहित ही आत्मा, वो ध्रुव दृष्टि का विषय है। ऐसा दृष्टि का विषय दृष्टि में आता है तब वो दृष्टि और ज्ञान है, उसके साथ आत्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं। एक रूप होने पर भी वो एक रूप दिखता है, उस समय भेद नहीं दिखता, मगर वो अनुभूति आत्मा कहने में आता है, उसका मतलब ये है कि वहाँ भेद नहीं है, इसलिए जो भी है वो आत्मा है। पर्याय पर्याय रूप रहती है उस समय भी, द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, मगर उसको नाम न देके सबको आत्मा ही कहने में आता है। ऐसा यहाँ अनुभूति को आत्मा कहा है। ये निश्चय से जो जीव अपने आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त ऐसा पांच भाव स्वरूप एक आत्मा को देखता है, उसे वास्तव में अनुभूति होती होती और होती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने अभी हमारे यहाँ राजकोट में अष्टपाउड़ चल रहा है, वहाँ दो मिनट में पूरा करते हैं, वहाँ एक 18-19 नंबर का प्रवचन चल रहा था, उसमें सम्यक दर्शन की महिमा का दर्शन पाहुड़ का वो पहला भाग चल रहा है, तो दर्शन अष्टपाहुड़ है ना, उसमें दर्शन पाहुड़ चल रहा है। उसमें गुरुदेव ने एक बात की कि सम्यक दर्शन बिना जीव कैसा होता है, कि जैसे थड़ बिना का जाड़ है, ऐसा सम्यक दर्शन बिना वाला आत्मा होता है। जैसे पानी बिना सरोवर कैसा लगता है, ऐसे सम्यक दर्शन नहीं है वो आत्मा, सम्यक दर्शन के बिना का आत्मा ऐसा दिखता है। जैसे झाड़ है वो थड़ बिना का है और पानी बिना का सरोवर है, ऐसे सम्यक दर्शन के बिना आत्मा की कीमत सचमुच में नहीं है, मगर जिसको आत्मा की कीमत भासती है उसे सम्यक दर्शन की पर्याय जरूर होती है, और वो सम्यक दर्शन से आत्मा सुशोभित होता है। इसीलिए तो अपन सम्यक दृष्टियों को प्रणाम करते हैं, हैं? ऐसा स्वरूप समझकर सभी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना।